आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
18 सितंबर 2025 दिन है थर्सडे का और घड़ी में 5 बजते ही मैं भव्या पांडे आ गई हूँ आपको खबरों का रुख कराने। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के शो में होगा बहुत कुछ और कुछ अहम मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे। आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कोलन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन के लिए नियम जारी किए हैं। अब इन नियमों के क्या परिणाम सामने आए हैं और क्या टिप्पणी रही है समुदाय की, एक खास रिपोर्ट में जानेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई भारतीय समुदाय के सदस्यों ने देश भर में सीनेटर जेसिंटा प्राइस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि लेबर पार्टी वोट सुरक्षित करने के लिए भारतीय प्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया ला रही है। उन्होंने इन बयानों को बेबुनियादी कहा है और आहत करने वाला बताया है। अब इस मुद्दे पर भारतीय समुदाय की क्या राय है आज के शो में जानेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि जून तिमाही के लिए नवीनतम फिनांसी विमेंस इंडेक्स जारी किया गया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक वेतन का जो अंतर है वो 11.9% से घटकर 11.5% हो गया है। आज जानेंगे कैसे बोर्डरूम तक का सफर तय कर रही हैं महिलाएं, इस अध्ययन की सीईओ और वित्तीय सलाहकार परिधि जैन के साथ। तो ये सब कुछ होगा आज के कार्यक्रम में और शो से जुड़े आपके जो संदेश हैं वो मुझ तक 04397997667 पर आते रहने चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आज का सवाल भी आपको बता देती हूँ। आज बात होगी सोशल मीडिया की, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म है जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यानी सबसे ज्यादा आप उस ऐप का उपयोग करते हैं। अब इस ऐप का कौन सा फीचर या बात आपको सबसे अच्छी लगती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है 04397997667। अंत में कुछ गाने भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और ऑस्ट्रेलिया में OAM जो पुरस्कार है वो आखिर होता क्या है, ये सभी जानकारी रहेगी आज के शो में। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आज की ताजा खबरें। प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा आज घोषित जलवायु लक्ष्य के तहत 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 62% से 70% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखेगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की सलाह के अनुरूप है। इसराइल का कहना है कि वे गाजा शहर से निकलने के लिए 48 घंटों के लिए एक अतिरिक्त रास्ता खोल रहा है क्योंकि उसकी बमबारी जारी है। आपको बता दूं कि लाखों लोगों ने इस दौरान शहर में शरण लिया हुआ है। इसराइल का अनुमान है कि लगभग 4,00,000 लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। ये संख्या एक हफ्ते पहले शहर में मौजूद लोगों की संख्या का लगभग 40% है। वहीं लेबर पार्टी की शाखाओं के एक समूह ने गाजा में नरसंहार के संयुक्त राष्ट्र के निष्कर्ष के बाद इसराइल के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए अपना समर्थन घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति के नरसंहार के प्रमुख निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस निष्कर्ष पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने भी इस मुद्दे पर अब तक कोई टिप्पणी जाहिर नहीं की है। वहीं बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के नवीनतम आंकड़े आज यानी गुरुवार को जारी किए जाएंगे। हालांकि इनसे बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन ये कोई बहुत बुरी खबर नहीं है। बेरोजगारी दर 4.3% रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले महीने 4.2% पर थी। हालांकि निवेश बैंक जेपी मॉर्गन के शोध अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये वृद्धि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त नहीं है। दावा किया जा रहा है कि 13 साल पुराने एक कर नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम आय वाले 12 लाख कर्मचारियों, खासकर की महिलाओं को इस साल अपनी सुपर एनुएशन बचत में $50 करोड़ का नुकसान होगा। निम्न आय सुपर टैक्स ऑफसेट के तहत $37,000 तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को $500 का रिफंड मिलता है, जो कि उनके सुपर एनुएशन में जाता है। जब इसे 13 साल पहले लागू किया गया था तो ये सबसे निचले 2 कर वर्गों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता था, लेकिन तब से उन कर वर्गों में बदलाव और मुद्रास्फीति के बावजूद ये उसी दर पर स्थिर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पहले स्वदेशी सांसद नेविल बोनर को कैनबेरा में एक कांस्य मूर्ति से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि ये सम्मान पुराने संसद भवन के बाहर इस मूर्ति का अनावरण करते हुए किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियों में से एक पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए 55 इलेक्ट्रिकल वैन और ट्रक शामिल कर रही है। फेडेक्स का कहना है कि वे एडिलेड में 15 बैटरी चलित ट्रकों के साथ अपनी शुरुआत करेगी और उसके बाद सिडनी और मेलबर्न में व्यापक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। बात करें भारत की तो उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटने की खबर सामने आई है। 17 सितम्बर की रात चमोली जिले के नंदाघाट घाट में ये बादल फटा। ऐसे में आपको बता दें कि 7 लोग लापता हैं और 2 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। इसी कारणवश मसूरी में 2,500 से भी ज्यादा पर्यटक तीसरे दिन फंसे हुए हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ये आपने सुने आज के समाचार। चलिए अगला जो अंश है वो सोशल मीडिया से संबंधित है और इसी से जुड़ा है आज का सवाल। आज मैंने आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ऐप है जिस पर आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का उपयोग करती हूँ और उसमें मुझे रील्स देखना काफी ज्यादा पसंद है। आप भी अपना सबसे फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप मुझे बताएं और आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्यों पसंद है ये भी बता सकते हैं। नंबर है 04397997667। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानियों से बचाना है, साथ ही उनकी निजता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
ऑस्ट्रेलिया के ई सेफ्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियामक दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सरकार द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध को लागू किया जा सके। हालांकि यह प्रतिबंध 10 दिसंबर से पहले लागू नहीं होगा, लेकिन ई सेफ्टी कमिश्नर का कहना है कि नियम इस तरह बनाए गए हैं कि बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और उनकी निजी जानकारियां भी सुरक्षित रहे। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हरेक यूजर के उम्र को सत्यापित करने की जरूरत नहीं होगी।
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Let's turn to that fascinating development in Australia.
Banning under 16-year-olds from using social media.
यह एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि दुनिया भर में पहली बार कोई सरकार बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने जा रही है ताकि उन्हें इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने इन दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा,
We will always keep backing Australian families and keeping Australian kids safe. We cannot control the ocean, but we can police the sharks And today we are making clear to the rest of the world how we intend to do this.
हालांकि ग्रीन्स की कला और संचार मामलों की सीनेटर सारा हैंसन यंग को यह ज्यादा पसंद नहीं आया. उनका कहना है,
What a mess. What an absolute debacle this social media ban is going to be on December 10. Rather than policing the sharks, the government is just hoping that the kids don't jump in the water. And what we know is that these social media companies will continue to have harmful content on their platforms, will continue to target young people with their advertising.
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया था जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए कहा गया था. मंगलवार को इसी कानून को लागू करने के लिए 55 पन्नों के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को सावधानी के साथ हटाने और उन्हें दोबारा खोलने से रोकने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है. ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर $50 million तक का जुर्माना लग सकता है. वे कहती हैं,
There may be a few who completely decide to do nothing just to test our resolve, and if that is what they plan to do, we will meet them with force. I think the minister said the other week that she had sharp elbows, so it's good to know that the government is behind this on this.
मंत्री वेल्स का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को हरेक यूजर के उम्र की पुष्टि करना जरूरी नहीं है और न ही उनके निजी जानकारियों को इस बहाने रखने की जरूरत है.
We want these rules and the delivery of these laws to be as data minimizing as possible to make sure that people's data is as private as possible. And I would say that the reason we're not asking everybody to verify their age is because these social media platforms know an awful lot about us of our own volition. And if you have been on, for example, Facebook since 2009, then they know that you're over 16. There's no need to verify that.
RMIT में मानव सूचना व्यवहार पर शोध करने वाली प्रोफेसर लीसा गिवन का कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है.
I don't think that parents want to use this as any kind of a security blanket. At the end of the day, kids will still encounter potentially harmful content online. That may not be on a social media platform. It may be on a web browser, but it could also be because they do kind of fool the system, and kids could still set up accounts or access things through other adults' accounts. So I think, parents are always going to have to be really vigilant.
Cyber expert Gautam Pandey का कहना है,
तो 10 दिसंबर 2025 से ये लागू होगा. लॉ इन्होंने निकाला था जो ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट, जिसमें सोशल मीडिया के मिनिमम एज पे इन्होंने फोकस किया. उस अमेंडमेंट में ये लोग लाए हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जब ऐसा रहता है जहां पे आप आइदर कंटेंट पुट करते हैं या जहां से आप इंटरेक्ट करते हैं, कुछ चीजें इसमें से एग्जेम्प्टेड है. जैसे अगर आप मैसेजिंग करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जहां पे आप कंटेंट डालते हैं उसे इंक्लूड नहीं किया गया. इनका मेन इंटेंशन है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक हो गया, फेसबुक है, उनको और अकाउंटेबल बनाने के लिए. अंडर 16 है, सबके प्रोफाइल को हटाना है. जो नए प्रोफाइल जो बनेंगे वो 16 साल से ऊपर के होने चाहिए, और अगर 16 साल के अंदर है तो वो एक्टिवेट नहीं करेंगे. एक ये भी है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जाएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देते हैं. उनको कंट्रोल्स लाने, हो सकता है वो वॉइस रिकॉग्निशन करे, कुछ अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें एक अप्रोच लेना है जहां उन्हें इंश्योर करना है कि जो प्रोफाइल बन रहा है वो प्रोफाइल इज अबव 16 ईयर्स ऑफ एज है. इसमें ये भी है कि सोशल प्लेटफॉर्म को बहुत हेफ्टी पेनल्टी देना होगा अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं.
उनका कहना है कि पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए.
और देखिए, जब ये सब रहता है ना, तो टू वे स्ट्रीट है. एक गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन और पेरेंट्स ऑब्लिगेशन भी होता है. तो एज अ पेरेंट्स भी उनको इंश्योर करना चाहिए कि जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो कहते हैं स्ट्रेंजर से बात मत करना, वही चीज तो हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि आप किससे आप बात कर रहे हैं. अगर आप जैसे बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं, बट दोज आर नॉट इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट. जो डिफॉल्ट इनेबलमेंट है वो आप सबसे बात कर सकते हैं. तो उसमें पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि जो बच्चों को जो डिवाइस दे रहे हैं, जिस चीज जिस प्लेटफॉर्म में है, जाके चेक करें कि सेटिंग्स में क्या है, किससे बात कर रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑडिट करना चाहिए.
ई सेफ्टी कमिश्नर इन प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते सिलिकॉन वैली में एप्पल, डिस्कॉर्ड, ओपन एआई, गूगल और मेटा सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच संचार मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने प्रधानमंत्री के साथ न्यूयॉर्क जा रहे हैं और इस कानून पर वहां भी चर्चा होगी। SBS न्यूज से हाना क्वान और गैब्रियल कैटेंसो की इस खबर को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने।
तो दोस्तों, इस खबर को आप तक लेकर आए शशि कुमार जी, और इसी पर आज का सवाल आपको बता देती हूँ। आप मुझे बताएं कि आप सबसे ज्यादा कौन सा सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं और क्यों। नंबर है 04397997667। साथ ही अगर इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए या नहीं। इस पर सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो जानना चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 04397997667। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौटकर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो जेंडर पे गैप है वो कम हो रहा है, इसी पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आऊंगी। आप सुनते रहें SBS हिंदी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जेंडर पे गैप यानी पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बना हुआ है। मैं हूं भव्या पांडे और आप जुड़े हुए हैं SBS हिंदी के साथ। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त करती हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा दर्शाता है कि फुल टाइम नौकरी करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 11.5% कम वेतन मिलता है, यानी हर $1 के लिए महिलाएं केवल 88 सेंट्स कमाती हैं। वहीं हाल ही में कुछ और भी ऐसे निष्कर्ष हैं जो इस मुद्दे पर सामने आए हैं। फाइनेंसी विमेंस इंडेक्स यानी FWX 2025 एक ऐसी त्रैमासिक रिपोर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की आर्थिक प्रगति और लैंगिक वित्तीय समानता की दिशा में हो रही प्रगति को मापती है। मार्च 2025 तिमाही में इस इंडेक्स ने 100 में से 77.92 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दिसंबर 2024 के मुकाबले थोड़ा सुधार दर्शाता है। इस सुधार का मुख्य कारण ASX 200 कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि है, जो कि इस समय 38.4% पर है। आपको बता दूं, ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। हालांकि इस सूचकांक के अनुसार यदि जो प्रगति है वो इसी गति से चलती रही तो ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण वित्तीय समानता यानी फाइनेंशियल जेंडर इक्वालिटी प्राप्त करने में लगभग 24 साल लग सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें समानता की गति सबसे धीमी बताई जा रही है, जहां अनुमानित समय 139 साल तक का बताया गया है। FWX ये भी बताता है कि कामकाजी महिलाओं की भागीदारी, आय, नेतृत्व में हिस्सेदारी, सुपर एनुएशन और निवेश जैसे क्षेत्रों में अभी भी व्यापक असमानता मौजूद है। ये जो इंडेक्स है ये नीति निर्माताओं, संस्थाओं, कंपनियों और इस असमानता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि महिलाओं को समान अवसर और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर बात करें बोनस, सुपर एनुएशन और अन्य भत्तों यानी पर्क्स की, तो ये अंतर और बढ़कर 21.8% तक पहुँच जाता है, जिसका मतलब है महिलाएं पुरुषों की तुलना में सालाना करीब $28,000 कम कमाती हैं। अब ये जो अंतर है ये विभिन्न उद्योगों में अलग अलग स्तर पर देखा गया है, जैसे कि मीडिया, बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में जो पे गैप है वो 40% से भी ज्यादा है। वहीं चाइल्ड केयर और नर्सिंग जैसे महिला प्रधान क्षेत्रों में भी पुरुष कर्मचारियों को ही ज्यादा वेतन मिलता है। मदरहुड पेनल्टी भी इस असमानता का एक बड़ा कारण है, जिसमें बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं कार्यबल से दूर हो जाती हैं या पार्ट टाइम काम करती हैं, जिससे उनकी कमाई पर दीर्घकालिक असर पड़ता है। इस रिपोर्ट की माने तो सरकारी क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां पर पे गैप लगभग 6.4% पर है। वहीं निजी क्षेत्रों में ये गैप काफी अधिक है। इसके अलावा फर्स्ट नेशंस महिलाएं और प्रवासी महिलाओं को ये अंतर और अधिक प्रभावित करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही हाल के वर्षों में कुछ सुधार इस क्षेत्र में आए हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वेतन असमानता हासिल करने के लिए अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए और इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी बियांका हार्ट्स हेजलमैन।
Oh, lovely to be here. Thank you so much for inviting me. The big thing is that gender financial equality has actually progressed in the June quarter. And year to date, we are certainly gaining, which is great for women and for gender equity more broadly and what it the signals it sends to younger generations in particular. And that's been driven by a record narrowing of the gender pay gap, which is a big tick, but also this rising trend over the past couple of decades, really, of women in the workforce.
अंका बताती हैं कि इस अंतर को कम करने में महिलाओं की लीडरशिप रोल्स में भागीदारी एक बड़ा कारक रहा है।
I think what we're seeing in the workplace is more of a focus on women pursuing leadership roles and companies facilitating in terms of trying to set gender targets or have more gender representation in management ranks, which is a direct feeder to those senior executive roles. There's a, without doubt, there's a hell of a lot more work that needs to be done there. And that's also affected by the fact that we have nearly the same number of women working part-time as we do working full-time in Australia. A lot of work that needs to be done there to increase the flexibility of work, to address pay outcomes for women in female-dominated sectors where we know they tend to earn less than male-dominated sectors that tend to earn more. But also where there is some positivity is if you look at institutions like the Australian Institute of Company Directors, there are so many more women undertaking those board-ready courses that are quite grueling to do, but with some great outcomes. So we've got more board-ready women and more women educating on that front. And certainly that aligns well with the number of women pursuing tertiary studies. We have way more women enrolled in degree courses than men. Unfortunately, this is not translating at the same rate of success that we see it translate for men. So education, we can keep doing all the courses we are doing, which is fabulous, but we do need something to really shift systemically from a leadership perspective in the workforce.
यदि डेटा को देखा जाए तो ये जो अंतर है ये विभिन्न इंडस्ट्रीज में अलग अलग देखा गया है। आईटी, मीडिया, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में जहां ये गैप 40% तक देखा जाता है, वहीं अगर हम महिला प्रधान क्षेत्रों की बात करें जैसे कि नर्सिंग या चाइल्ड केयर, वहां भी जो पुरुष कर्मचारी हैं वो ज्यादा वेतन कमाते हैं। ऐसे में बियांका कहती हैं कि वर्क फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कार्यस्थल पर लचीलापन और अन्य सुविधाएं महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करती हैं।
Yeah, well, what we tend to see is across all industries is men tend to dominate in these more managerial positions. So when I said earlier that we tend to have this drop off of women pursuing senior management ranks because we have this spatial leash or this leash as we tend to talk about with the index where women are opting for that greater flexibility of their careers to be there for family and care commitments. So there's this unpaid work attachment that we choose to be a part of. We want to be there for our families, you know, and I'm talking very generically here. But this makes it a little bit harder when we come back into the workforce. We've missed this part of this critical phase, and when women are coming back, they tend to pursue more part-time roles so they can have this flexibility. It is slowly changing, but it is not changing at the pace that we need to in order to really significantly increase the amount of women in leadership and those CEO board-ready positions. And when what we do know about the research is when we have more women in those C-suite positions, it does filter through, and then you start to see more women in these managerial ranks, and that's when pay outcomes are better more broadly across the workforce, and gender equity measures are better across those particular organizations. So we know it is effective. The challenge is really having workforce structures where women are encouraged to pursue management positions that have greater flexibility, and that this flexibility isn't just a female thing. It is for men as well, so that they can participate to their desire in greater unpaid work or other external pursuits to have that greater work-life balance. We need to have that, and it should not have a gender attached to it, because that is detrimental to gender equity more broadly.
यदि बात की जाए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं की, तो जेंडर पे गैप के संदर्भ में अब तक कोई खास रिसर्च या ठोस डेटा सामने नहीं आया है। इस पर बियांका बताती हैं।
Unfortunately, we don't have a lot of depth from the ABS just yet on what that intersectionality really looks like. But we do know from various data sets that are available, even as not as extensive as we'd like them to be, that it is more challenging from different ethnic groups. There are various different challenges across the board. So when we talk about the Women's Index, we are talking in very general terms, and unfortunately just yet we don't have the data to get as granular as we really would like to, because when we can start to talk on those different levels, we can start to influence a bit more and really start to reflect what's going on in different cultures and to give a better narrative, I suppose. Thank you so much.
Paridhi Jain ek financial expert hain aur is pure mudde ko alag drishtikon se dekhti hain.
तो ये सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हो रहा है, एंड अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बाय एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, एस्पेशली बिकॉज स्टडीज शो दैट दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली अफेक्ट वुमेन एट द पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ पेरेंट. यानी कि जब बच्चा होता है फिर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अफोर्डेबिलिटी ऑफ डे केयर, मैटरनिटी लीव, रिटर्निंग टू वर्क पार्ट टाइम इंस्टेड ऑफ फुल टाइम. तो फिर करियर में वो जो गैप आ जाता है, उस गैप के वजह से वो पे को बढ़ाने में मुश्किल होती है. सो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन टू सपोर्ट न्यू मम्स इन रिटर्निंग टू वर्क सूनर इफ दे विश.
साथ ही वे सभी महिलाओं को अपने फाइनेंसेस के प्रति जागरूक एवं सतर्क रहने का सुझाव देती हैं.
सो फॉर वुमेन इन पर्टिकुलर, मैं कहती हूँ कि जितनी भी जल्दी आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हो अराउंड मैनेजिंग योर मनी, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन इन पर्टिकुलर, बिकॉज फिर बाद में आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं लाइफ में. वेदर यू वांट टू टेक अ ब्रेक टू स्टार्ट अ फैमिली, यू डोंट वांट टू गो बैक टू वर्क आफ्टर यू हैव अ चाइल्ड, वो सब फिर आप चॉइसेस ले सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सिक्योरिटी है, वो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, आपने ऑलरेडी बना रखा है वो चीज, यू बिल्ट इट अप. So that's why I think in that context, in particular, learning how to start investing is extremely important. And वो एक चीज है जो हमारे culture में थोड़ा सा मैंने नोट किया है कि बहुत डर होता है. And through investing, you can actually create more income streams that are not dependent on your job or your salary, and then that gives you more freedom, more independence, and then you're not dependent on what is my employer going to pay me. So that's something, that's another perspective that I really hope women will capitalize on, because that is something that's in their control. It's not dependent on the employer or the government policies, although of course we should obviously be working towards supporting women in these industries, in closing the gender pay gap.
इस अंश में प्रस्तुत विचार वक्ता के अपने व्यक्तिगत विचार हैं. SPS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत. SPS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SPS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे. तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो रिपोर्ट है ये सुनकर कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई होगी. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा. लौटकर हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी के जो संदेश मेरे पास आ रहे हैं वो भी एक एक करके पढ़ूंगी. तो सुनते रहें SBS हिंदी.
क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी के कार्यक्रम पर, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या के साथ। तो ऑस्ट्रेलियाई भारतीय समुदाय के सदस्यों ने देश भर में सीनेटर जेसिंटा प्राइस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि लेबर पार्टी वोट सुरक्षित करने के लिए भारतीय प्रवासियों को ला रही है। उन्होंने इन बयानों को बुनियादहीन और आहत करने वाला बताया है, जबकि कई शीर्ष संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सिडनी में विपक्षी दल के नेताओं के साथ एक बैठक में भाग लिया। वहीं विभिन्न राज्यों से अन्य सदस्यों ने जोर देकर कहा कि आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के निर्माण में समुदाय के योगदान के लिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। इस अंश में हम जानेंगे इस मुद्दे पर आखिर भारतीय समुदाय की क्या सोच और भावनाएं हैं।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में चल रहे माइग्रेशन से जुड़े विवाद के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल सेनेटर जेसिंटा प्राइस के एक बयान को लेकर देशभर में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। पिछले महीने एंटी इमिग्रेशन रैलियों के बाद जेसिंटा प्राइस ने ABC पर कहा था कि लेबर पार्टी भारतीय आप्रवासन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अधिकांश भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी को वोट देते हैं। इस टिप्पणी के बाद भारतीय समुदाय के बहुत से लोगों ने, यहां तक कि सांसदों ने, जिनमें प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी भी शामिल हैं, अब मांग कर रहे हैं कि जेसिंटा प्राइस समुदाय से माफी मांगे। हालांकि मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में जेसिंटा प्राइस ने सीधे माफी नहीं मांगी है और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें किसी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत है। और ये ABC के इंटरव्यूअर थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इंडियन माइग्रेशन मुद्दे को सामने लाया था। और अब लिबरल पार्टी के कुछ सदस्यों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। भारतीय समुदाय के आक्रोश को देखते हुए ऑपोजिशन लीडर सूजन ले ने जेसिंटा प्राइस की इस टिप्पणी को गलत करार दिया और कहा कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इसके बाद सूजन ले ने एक वीडियो भी जारी किया और सिडनी के हैरिस पार्क स्थित लिटिल इंडिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी की। अब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भी इस मामले में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि प्राइस की टिप्पणियों से भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को नुकसान पहुंचा है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ऑपोजिशन लीडर सूजन ले या स्वयं जेसिंटा प्राइस की ओर से अभी तक कोई माफी नहीं आई है, लेकिन इसके चलते सूजन ले ने भारतीय समुदाय के साथ एक राउंड टेबल आयोजित किया जिसमें बहुत सी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं शामिल थीं। इंडो ऑस्ट बाल भारती विद्यालय हिंदी स्कूल की माला मेहता, जो इस राउंड टेबल में शामिल थी, बताती हैं।
सबको उन्होंने इकट्ठा किया था और उनसे उनको बातचीत करने का, अपने कंसर्न व्यक्त करने की का मौका दिया गया था। मैं भी वहाँ प्रस्तुत थी। उन्होंने सबने अपने अपने कंसर्न्स व्यक्त किए, तो हमने भी उनको बताया कि हमारे स्कूल में भी कई छात्र हैं जिनको बुलिंग फेस करना पड़ता है। कईयों ने एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे किसी ने एयरलाइन का एग्जांपल दिया था कि किसी को उन्होंने अलग से चेक करने के लिए अलग से बुलाया। उन्होंने ये बोला है कि वे ये सब कंसर्न्स जो हैं वो लेकर उस पे गौर करेंगे, और सबने यही कहा था कि जेसिंटा प्राइस, सेनेटर जेसिंटा प्राइस को सबसे अपॉलोजी मांगनी होगी। दे डिडंट वांट टू कमिट देमसेल्व्स कि उन्होंने माफी मांगा, उनसे मांगा है नहीं मांगा, उन्होंने उसमें कोई कमिटमेंट नहीं दी। लेकिन हाल ही में 7 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस का कार्यक्रम हुआ था, एक बड़ी ऊंची स्तर तक हुआ था, और वहाँ पे हमारे जूलियन लेसर, जो हमारे इलाके के मेरे इलेक्ट्रिक के फेडरल मेंबर, बराउरा के फेडरल मेंबर हैं और वो शैडो अटॉर्नी जनरल भी हैं
जी,
तो जूलियन लेसर भी उस दिन मौजूद थे इस आयोजन में, और उन्होंने ओपनली सबके सामने उन्होंने माफी मांगी। जो सेनेटर प्राइस के बिहाफ में उन्होंने सारे
इंडियंस जो प्रेजेंट थे, मौजूद थे, प्रस्तुत थे वहां पे, उन भारतीय प्रस्तुत थे, उनके उनके सामने उन्होंने खुद माफी मांगी थी।
वहीं मेलबर्न में रहने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ विक्टोरिया के प्रेसिडेंट वासन श्रीनिवासन बताते हैं,
हम लोग जब माइग्रेट करते हैं इंडिया से, हमको मालूम नहीं है कौन लेबर है कौन लिबरल है। यहाँ आने के बाद कम से कम 10-15 साल लगता है यहाँ का पॉलिटिक्स का सीखने के लिए, उसके बाद ही लोग डिसाइड करते हैं, वो भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट के तरफ से, पॉलिसी के तरफ से। यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं करता, लेबर पार्टी में ज्वाइन करो, लिबरल पार्टी में ज्वाइन करो।
जी,
हमारा जो कम्युनिटी यहाँ के बहुत कुछ किया, हम लोग नॉट ओनली इन इकोनॉमिक साइड, वी कंट्रीब्यूटेड इन एवरी एस्पेक्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, यू नेम इट, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग। सो वी हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू दिस नेशन बिकॉज़ वी केम हियर बाय चॉइस। वी कुड हैव गॉन एनीवेयर एल्स विद आवर स्किल्स, बट वी चोज ऑस्ट्रेलिया। सो For someone in that level as a senator, she should have thought about it 10 times before she made such a comment. And some said, I hope senator will apologize to the Indian community. As a liberal, as a former liberal candidate, I've worked with many leaders and members of the Liberal Party over the last 38 years. We never had such a statement from anybody or from any Labour Party members. Pehle to rally hua tha. रैली में ये लोग इंडियन कम्युनिटी के तरफ से बहुत सवाल उठाया हमारा माइग्रेशन के तरफ से। मेरा जो सवाल है, इंक्लूडिंग जो रैली में था, इसमें कोई नेटिव नहीं है, ओनली इंडिजिनस पीपल कैन कॉल देमसेल्फ एज नेटिव। एवरी वन ऑफ अस इन दिस कंट्री केम थ्रू माइग्रेशन, ईदर थ्रू बोट और बाय एयर, लाइक अस इंडियन, बाय स्किल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। ये लोग हमारा स्किल को और हमारा कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो लोग बहुत कम है जो ऐसे सोचते हैं, 95% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द मल्टीकल्चरल सेक्टर। सो इवन दो हम लोग बहुत अपसेट हुआ और रैली को देखे, बट वी आर हियर टू कॉन्ट्रीब्यूट, नो वन कैन टेल अस वेयर टू गो।
एडिलेड में रहने वाले राजेंद्र पांडे हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष हैं। इंडियन माइग्रेशन विवाद को लेकर वे कहते हैं,
जो जसिंडा प्राइस सेनेटर जो अभी उन्होंने भारतीय प्रवासियों को लेकर जो टिप्पणी करी है, उससे पूरे ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में एक बहुत ही उनको ठेस पहुंची है। ये सिर्फ भारतीय समाज के लिए नहीं, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जो भी यहाँ प्रवास करने आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही खेद की बात है कि हमें लगता है कि हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने तरफ से कुछ योगदान दे रहे हैं देश में, और हमें इस तरह से एक शक की नजर से देखा जा रहा है। हमारी निष्ठा ऑस्ट्रेलिया के प्रति और हमारे योगदान को राजनीतिक कारणों से जोड़ा जा रहा है। इससे एक मुझे इतने खुद इतने सारे फोन आए, लोग इतने विक्षिप्त थे, और अब लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या हमें यहाँ रहना चाहिए, ऐसा एक मन में प्रश्न उठ रहा है हमारे लोगों के, इंक्लूडिंग मेरे मुझको भी, कि क्या ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गए तो, लेकिन क्या कभी हमें ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करेगा।
तो आखिरकार इस पूरे विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है और समुदाय की क्या अपेक्षा है?
ये आपने सही बात उठाई कि इसका अब अगला क्रम क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो हमारी संस्कृति सिखाती है क्षमा करना। इसको एटलीस्ट पर्सनली मैं ऐसे ही प्रोसेस कर रहा हूँ, और जो मुझसे बात कर रहा है उसको भी मैं ये समझा रहा हूँ कि उसके पीछे अगर देखा जाए, वो खुद यहाँ एबोरिजिनल को छोड़ के सभी लोग माइग्रेंट हैं।
जी,
तो हम एक दूसरे पे कहते हैं कि तुम क्यों आ गए, हम पहले आए तुम बाद में आए, तो आपस में हमें करने से कोई फायदा नहीं है। ये हमें खुद को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में हर क्षेत्र में योगदान दे रहा है। आप स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, तकनीकी हो गया, व्यवसाय, हर जगह हमारा मेहनतकश और जिम्मेदार समुदाय है, और यही हमारी पहचान है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रीजन से, ये मैंने भी एक बार बोला कि उसने, जसिंटा ने इंडियन का नाम क्यों लिया, क्योंकि उसको मालूम है यही एक समाज है जो कुछ नहीं करेगा, हम रोड पे निकल के झगड़ा नहीं करेंगे। तो इसको भी एक तरह से पॉजिटिव में देखा जाना चाहिए, हालांकि अच्छी बात नहीं है ये, इसकी तो हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सेनेटर प्राइस इससे एक बार माफी मांग ले कि मुझसे गलती होगी। पर अगर वो नहीं मांगती तो उसके पीछे पड़ने का भी कोई आवश्यक काम नहीं है। मुझे लगता है कि हमको बल्कि और दोहरी ताकत से हमें अपने समाज को ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करना चाहिए कि हमको ये डबल एनर्जी से काम करना है ताकि जो वाइडर कम्युनिटी है उनको पता चले कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आके यहाँ नौकरी करते हैं, सरकार से हम कोई सहायता नहीं लेते और हम जिम्मेदार समाज के अंग हैं।
कैनबरा के रहने वाले संतोष गुप्ता बहुत सी भारतीय संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, वे बताते हैं।
मैं यहाँ कैनबरा में रहता हूँ और हम लोग, मैं यहाँ के जो कम्युनिटी एक्टिविटीज है, कम्युनिटी एसोसिएशन है, जैसे की हिंदू टेम्पल कल्चरल सेंटर, कैनबरा हिंदी स्कूल और बहुत सारी, जैसे हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर।
जी
देखिए, ये जो है उनका जो कमेंट्स था या जो भी यहाँ पर रैलियाँ हुई हैं, काफी जगह, काफी जो है शहरों में रैलियाँ हुई हैं, हमने भी सुना था, और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप किसी एक समुदाय को उसको लेके, कि कहाँ से आए हैं उसको लेके टारगेट करते हुए अगर आप कुछ ऐसी बात करते हैं। कोई भी, मतलब हमारा ऑस्ट्रेलिया कैनबरा सारा ही मैं कहूँगा इतनी अच्छी जगह है और मल्टीकल्चरल लोग हैं, बहुसांस्कृतिक, सभी लोग इतने प्यार से यहाँ पर रहते हैं। और मैं भी करीब 20 साल से ज्यादा मेरे को हो गया है, कभी भी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो भारतीय समुदाय का अगर आप योगदान देखें, पूरा जो भारत ऑस्ट्रेलिया का जो भी है, मैं कहूँगा चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे सांस्कृतिक हो या कहीं भी हो, अगर बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए, और भारतीय लोग जो सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही मेहनती लोग हैं, और हमारा तो कहना है, हमारा जैसे आपने सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेवाय कुटुंबकम। तो हम लोग तो उस जगह से आए, हमारी संस्कृति कहती है पूरा संसार ही एक परिवार है। लेकिन जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया चेयर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन होते हैं या पहले मिस्टर जूनियन लीसर होते थे और वो आज भी हैं, और मैंने सुना है, मेरे पास किसी ने भेजा है कि सिडनी में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करके उनकी, जसिंडा प्राइस जी की तरफ से माफी मांगी है जूनियन लीसर साहब ने भारतीय समुदाय से और लिबरल पार्टी की तरफ से। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही एक अच्छा कदम है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल माइग्रेशन डिबेट जारी है। इस बीच समुदाय की चिंताएं अब हर स्तर पर उठाई जा रही है और यहां तक कि भारतीय सरकार ने भी मीडिया को सूचित किया है कि वे एंटी इमिग्रेशन रैली को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ संपर्क में हैं। अब समय ही बताएगा कि क्या ये स्थिति इन दोनों बड़े देशों के संबंधों की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं।
इस साक्षात्कार में व्यक्त किए गए विचार राय व्यक्तिगत हैं। एसपीएस हिंदी ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
तो दोस्तों, ये आपने सुना कि जेसिंटा प्राइस जो है सीनेटर, उनके बयान पर भारतीय समुदाय ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटकर कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने लेकर आऊं। और ऑस्ट्रेलिया में आखिर OAM क्या होता है, ये पुरस्कार होता क्या है, किस तरह से ये दिया जाता है, इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनते रहें SBS हिंदी।
SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें, किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या के साथ। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज की शाम का पहला संदेश मुझ तक आ गया है। हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, नाइस प्रोग्राम। सोशल मीडिया बैन पर वो कहती हैं कि ये जो बैन है ये लग जाना चाहिए उस उम्र के बच्चों के लिए। बताती हैं कि ये भी सोशल मीडिया इस्तेमाल तो करती हैं लेकिन कम इस्तेमाल करती हैं और ज्यादातर यूट्यूब और व्हाट्सएप का उपयोग करती हैं दोस्त और परिवार के साथ बातचीत करने के लिए। एक और संदेश मुझे आया है यहाँ पर चेतन शाह जी की ओर से, जो कि लिखते हैं, नमस्ते भव्या, युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इन कारणों से जरूरी है। कारण बताते हैं, कह रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो गलत सूचना फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पारस्परिक संबंधों पर इसका असर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों पर इसका असर पड़ता है। ये मानना है चेतन शाह जी का। आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से बच्चों को प्रभावित कर रहा है और ये जो बैन है ये सही है या नहीं, बताएं मुझे 04397997667 पर। चलिए, कैसे नामांकित करें OAM सम्मान के लिए समुदाय से किसी को, आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में।
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने समुदाय में असाधारण योगदान दिया हो? ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पृष्ठभूमि से या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत। आप उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामांकित करके उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने में मदद कर सकते हैं। स्वागत है ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं कि हमारे समुदाय के साधारण सदस्यों की असाधारण उपलब्धियों का जश्न क्यों मनाना जरूरी है, और जितना अधिक हम अपने समुदाय में इन असाधारण सदस्यों की पहचान और सराहना करेंगे, उतना ही ऑस्ट्रेलियाई ऑनर्स की जो सूची है उसमें देश की सच्ची विविधता दर्शाई जाएगी। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे राष्ट्रीय सम्मान प्रणाली का हिस्सा है। ये उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मान्यता देने और उनका सम्मान करने का सर्वोच्च तरीका है, जो अपने दायित्वों से कहीं अधिक जाकर कार्य करते हैं और समुदाय में शानदार योगदान करते हैं। इस पुरस्कार के लिए नामांकनों पर विचार काउंसिल फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया करती है, जो एक स्वतंत्र निकाय है और गवर्नर जनरल को अपनी सिफारिशें भेजती है। रॉब आइलिंग गवर्नर जनरल के कार्यालय में निदेशक हैं। वे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए है, और यही कारण है कि ये प्रक्रिया वास्तव में समुदाय के भीतर से किए गए नामांकन से शुरू होती है।
Some recipients are very well known, but the vast majority are unsung heroes. The sort of people that we all know in the community who give tirelessly of themselves, work selflessly, and really make a difference. Some are volunteers, some achieve things in the community sector, in industry, in sports, in the arts. There's really no limit to who can be recognised, but everyone that is recognised has one thing in common, and that's that somebody else has taken the time to nominate them for recognition.
जब आप किसी को पुरस्कार के लिए नामांकित करते हैं, तो काउंसिल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस प्रक्रिया का प्रबंधन करती है और ये तय करती है कि किसे मान्यता दी जानी चाहिए और किस स्तर पर। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चार स्तर होते हैं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर यानी AC, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर यानी AO, मेंबर ऑफ द ऑर्डर यानी AM और मेडल ऑफ द ऑर्डर यानी OAM। इनमें से सबसे प्रचलित पुरस्कार OAM है। किसी को नामांकित करने के लिए समय निकालने वाले व्यक्तियों में से एक हैं माइकल स्मिथ।
The particular individual who I was part of nominating, to me, had just been doing an outstanding service to the community over a period of time, and I just felt that it was something that ought to be recognised. The sector that this person had been working in, and working in voluntarily, I should add, I had not seen recognized in previous awards.
एक बार नामांकन जमा हो जाने के बाद गवर्नर जनरल के कार्यालय से एक शोधकर्ता प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करते हैं। नामांकन फॉर्म में नामांकक उन संदर्भ दाताओं की सूची देते हैं जो नामांकित व्यक्ति और उनकी सेवाओं पर टिप्पणी कर सकते हैं। शोधकर्ता इसके बाद अतिरिक्त संदर्भ दाताओं से संपर्क करते हैं, जो अपनी राय और दृष्टिकोण साझा करते हैं। आइलिंग बताते हैं कि ये कठोर प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 18 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है।
So the council really relies on having a very in-depth, thorough assessment of a nominee's service, what they've done, what that impact has been, and to get that picture, there is a comprehensive research process. Once a nomination proceeds to council, they consider it very carefully. They make recommendations to the Governor-General, who is ultimately the one who signs off on those recommendations, and then announcements are made twice a year in January and June. So what that means is the process does take some time.
पुरस्कार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गोपनीयता है। शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रक्रिया के हर पहलू को गोपनीय रखा जाता है, यहाँ तक कि प्राप्तकर्ताओं के नाम भी। टिम थॉर्प को सामुदायिक रेडियो में उनकी सेवा के लिए OAM प्रदान किया गया था।
Around about October, I got an email telling me that I was being considered for this particular award, and I was to either accept it or write a letter to not accept it. So I filled in the form, and I was sworn to secrecy. They said this is not to be spoken about to anybody. Then in December, I received another email saying my award had been approved by the Governor General, and once again to treat the matter with strict confidentiality.
Hilcott Özgün को भी तुर्की समुदाय में उनकी सेवाओं के लिए OAM प्रदान किया गया। उन्हें भी अपने नामांकन के बारे में बात ना करने के लिए कहा गया था।
It was a big surprise to me. I received an email from the Order of Australia Medal Committee a week before their announcement, and they asked me to keep it a secret. I have worked on many different kind of confidential projects at my workplace. So it was easy for me to keep this secret as well.
जब आप किसी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामांकित करते हैं तो आपसे ये भी अनुरोध किया जाता है कि आप उस व्यक्ति से नामांकन को गोपनीय रखें। इसका उद्देश्य उनकी अपेक्षाएं ना बढ़ाना है, क्योंकि नामांकन हमेशा सफल नहीं होते। आइलिंग बताते हैं कि संदर्भ दाता को भी गोपनीयता बनाए रखनी होती है।
In that independent research process, the Secretariat and the Council of the Order of Australia really rely on the candor and ability of referees to provide frank and honest feedback about the person that's been nominated. Confidentiality is taken very, very seriously so that the person that is being nominated will never know what a referee has said about them. That confidentiality and that frank advice from referees is a critical part of the system.
इस प्रक्रिया के चारों ओर इतनी अधिक गोपनीयता होने के कारण प्राप्तकर्ता को ये तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें नामांकित भी किया गया है, जब तक कि घोषणा से ठीक पहले बताया न जाए।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पसंद आया होगा। संदेश मुझे आ गया है NC त्रिवेदी जी का, लिखते हैं भव्या एंड टीम को प्यार भरा नमस्कार। कह रहे हैं वेरी गुड प्रोग्राम, बेटर सेगमेंट्स एंड बेस्ट songs expected, good presentation. तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी, और उम्मीद करती हूँ कि जाने से पहले आज की शाम का ये जो एक गाना मैंने बजाया है ये आपको पसंद आएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक आप सब सुनते रहें SBS हिंदी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।